तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशाखां सुदेवी प्रणमामि हरि प्रिय हा देविका जगद्गुरुदयाद्यवाच जाची निपत्त भोगी दंडवत भवतारिति अस्य प्रसादम विदस्य जनस्य कृत्वा गंधर्वकेतवगणैर्विद्यम् अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जाट्यं जागुरुच संविदधतं पट्टंबरस्थं हृदिलशब्दामाभिरुद्धं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन्दाम् भक्त्या विहीना परातलक्षे चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणां गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहपातरया विभाव पुत्रेति तन्मेतया कर्गो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां अवैवास्मिन् त्वमेवास्मिन् न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे कृष्णाय मां च
का दर्शन चाहे वो असुर हो देवता हो मनुष्य हो गंधर्व हो पेड़ हो पौधा हो कुछ भी हो जिसमें जीवन है उस जीव मात्र का स्वरूप धर्म जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास कृष्ण का नित्य दास। जब किसी कारण से भगवान की विशेष कृपा होती है तो भक्तों का संग करा देते हैं भक्तों की कृपा से उसमें सुप्त जो वृत्ति भक्ति की होती है वो तो जागृत हो जाती तब उसकी अनुभूति करता है। हम सभी लोग भगवान के सेवक सेविका ही हैं। अभी भी हम सेवा कर रहे हैं अनुभूति हमें नहीं। प्रत्येक जीव अपने स्वरूप से यदि वो चिन्मय है तो वो सब समय भगवान की सेवा कर रहा है। मुक्त पुरुष इसको सहज ही अनुभव कर लेंगे रियलाइज करेंगे बद्ध जीव नहीं कर इसकी अनुभूति होना ही साधन है। साधन भजन से उसकी अनुभूति देखो साधारण रूप में मनुष्य की तो बात क्या एक असुर भी भगवान का भक्तों का और सब देवताओं का और संसार का विरोधी काम कर रहा है, किंतु उसमें से भी कैसे भक्ति निकलती है, भक्ति की वृत्ति श्रीमद् भागवत में इसको दिखलाया गया। और जो भगवान की सेवा भी कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है और उसमें भी कुछ कारणों से वो कैसे नीचे चला आ रहा है, माया में गिर रहा है, इसको भी श्रीमद् भागवत में दिखाया है। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्णा मायांच जदा पाश्यां जया सम्मोहितो जीव त्रिगुणा
आत्मानं त्रिगुणात्मकं
आत्मान परे अपि साक्षात् भक्तयोगम् अधोत्सजम् लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे शाश्वत संहिता यस्या वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यता पुरुषा शोकमोह भया। व्यास जी के अंदर में कुछ ग्लानी आई, समस्त शास्त्रों के प्रकाश करने पर वेद का विभाग भी किया, वेदांत भी बनाया, वेदांत दर्शन समस्त उपनिषदों का सार उसमें भर दिया, उसको सहज रूप में समझने के लिए पुराणों की भी को भी प्रकाशित किया। तो अभी इन लोगों के समझ में ना आए तो स्त्रियों और शूद्रों जैसे बुद्धि वाले लोगों के लिए महाभारत की भी रचना कर डाली। जो लड़ाई झगड़ा में सब समय रहते हैं, विषय में फंसे रहते हैं, स्त्री और संसार पुत्र इत्यादि में फंसे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सहज करके भगवान की भक्ति कैसे हो, माँ भारत की भी रचना की, सब कर दिया। तभी उनके मन में ग्लानी थी। व्यास जैसे व्यक्ति के हृदय में भी ग्लानी हो सकती है। क्यों ग्लानी हुई, खुद नहीं समझ सके इस विषय को। हम भी जब विचार करते हैं जो हमारे अंदर में चाहते हैं जो क्रोध न रहे, काम न रहे, भगवान की भक्ति एकदम फाउंटेन की भांति, निर्मल धारा की भांति प्रवाहित होती है ना, किंतु होता नहीं। हम चाहते हैं तब, इसके लिए हम लोग सब प्रयत्न ने तभी नहीं हो रहा। मन कभी कभी ग्लानी से भर जाता है। क्यों हो जाता है, हम इसकी मीमांसा नहीं कर पाते। यदि वैसा गुरु हो उसके पास हम जाएं तो वो तो ठीक है, किंतु हम उसे छिपाते हैं। व्यास जी ने छिपाया नहीं अपने गुरु जी से, और गुरु जी भी ऐसे हैं जो मन की बात भी समझ लेते हैं, कहाँ गलती है, कहाँ क्या है, कहाँ कमियां हैं वो समझ लेते हैं। वो गुरु गुरु हैं। तो वो व्यास जी भी वैसे और उनके गुरु जी भी वैसे। नारद जी अपने आश्रम में बैठे हैं किंतु उनका चित्त लगा हुआ है। हमारा चित्त क्यों ग्लानी से भर, हम चित्त क्यों क्षुब्ध है, चंचल हो रहा है। उन्होंने तो विचार किया ना, हम लोग विचार नहीं करते जो क्यों चंचल हो रहा है। भगवान में मन नहीं लग रहा, नाम में मन नहीं लग रहा है, साधन में मन नहीं लग रहा है। हम तो ऐसा एक गुरु खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं व्यक्ति, बस ऐसे हाथ करते भक्ति हो जाए, रसगुल्ला पका पका ही दे दे, बस एक दिन एक मिनट दो मिनट के अंदर में साधन भजन उसका क्लेश नहीं चाहते, कोई भी क्लेश नहीं करें, बस गुरु जी हमको बस ऐसे हाथ रख दीजिए और हमको मिल जाए बस सुखी और शांति हो, बैठे बैठे भजन करें। अब व्यास जी चिंता करें, हम लोग को चिंता करनी चाहिए हम किस स्टेज में हैं, हमारा चित्त क्यों क्षुब्ध हो रहा है, क्यों चंचल हो रहा है, क्या चीज अभाव हमारे अंदर में है, यह अभाव कैसे पूरा होगा, हम कैसे ठीक ठीक में साधन भजन कर सकते हैं। मैं एकदम प्रतिज्ञा करके रखूंगा गुरु और वैष्णव लोग जो कहेंगे मैं उसको करूंगा, किंतु हम लोग यही नहीं करना चाहते, वो कहेंगे मैं हम लोग नहीं करेंगे, हमको चीज मिलनी चाहिए, तो ऐसा जन्म जन्मांतर में कभी नहीं होगा, करना पड़ेगा तुमको, करना पड़ेगा हमको, वो कहेंगे ये ऐसा करो, भगवान का भजन करो यही कहेंगे, जब जब तुम जाएगा उनके पास में तो यही कहेंगे भगवान का नाम करो, तुम्हारे लिए वो साधन करके नहीं देंगे, तुमको अपना करना, विशेष विशेष क्षेत्र में भगवान या उनके भक्त लोग किसी ऐसे योग्य जीव को दे करके अहत की कृपा कर देते हैं एक आदर्श रखने के लिए, बाकी सब 99% रेकरिंग नहीं, सब होता है साधन के द्वारा, इसलिए भाई साधन करना पड़ेगा जैसे गुरु और वैष्णव का, इसलिए व्यास जी चिंता कर रहे थे, वैसे हम लोग भी चिंता करेंगे कहाँ अभाव है, कहाँ हमारे भजन में त्रुटि है, कैसे हम भजन करें। मैंने देखा जैसे मैं पढ़ा लिखा तो जरा कम हूँ, तो थोड़ा सा व्याकरण पढ़ा, थोड़ा सा ये नहीं आता है, हारमोनियम थोड़ा सा सीख लो, जो मन में आया वही कुछ समझ करके करता, ये गड़बड़ी कर देगा। गुरु वैष्णव जिस चीज को कह रहे हैं वैसा साधन भजन करो, व्यास जी चिंता करके कुछ भी उनको नहीं मिला, मैंने वेद वेदांत सब कुछ ठीक किया, उपनिषद उसका सार भी लिखा, मैंने महाभारत भी लिखा, पुराण भी बतलाए, अधिकारियों के अनुसार में उनके साधन भी हमने साधन निर्णय किए, किंतु हमको ही शांति नहीं, इतने में घूमते घामते रमते हुए बिना लिए हुए देवर्षि नारद जी वहां पर उपस्थित हैं, कल्याण हो तुम्हारा, सुख से है शांति से है तो कोई चिंता तो नहीं है, अरे तुमने वेदों का विभाग कर दिया और उसमें लोगों को वर्णाश्रम धर्म के लोगों को क्या क्या जरूरत है, यज्ञ कैसे करना चाहिए और जितनी भी बातें वेदों में है वो शिक्षा तुम ले ली, उसमें भी समझ में नहीं आया तो आपने पुराणों में नाना प्रकार के उपाख्यानों के द्वारा क्या करना चाहिए लोगों को तुमने ये बताया, शिवलिंग की स्थापना करके दुर्गा और शंकर की पूजा करो, आपने ये भी लिखा दुर्गा जी की पूजा करो और सब दूसरी दूसरी आराधनाएं सब करो, गणेश जी की पूजा करो, फिर आपने बताया जय रामचंद्र जी की सेवा करो, नृसिंह जी की सेवा करो, तरह तरह के ये सब बतलाया आपने, बात सबको सब कुछ बतलाया, फिर भी तुम्हारा चित्त कुछ देखते हैं अशांत क्यों, सब कुछ तो आपने बतला दिया लोगों को जो कुछ बतलाना है, किंतु आप अशांत हैं, चित्त आपका क्षुब्ध है, मन मालूम होता है कि आपका चंचल है, कुछ चीज का अभाव, आपको खुद ही वही चीज नहीं मिली, अजय गुरु जी यही तो मुझको पता नहीं चल रहा है जी, मैंने मुझे क्या त्रुटि और कमी है, फिर उन्होंने चिंता करके हंसने लगे, नारद बोले जी तुमको जो करना चाहिए वो तो तुमने किया नहीं, बाकी सब पृथ्वी का सब कुछ काम कर दिया, तुमने शरीर बनाया किंतु आत्मा तो उसमें आई नहीं। आत्मा रहित शरीर का क्या मूल्य है? कोई भी मूल्य नहीं है। ऐसे तुमने ये सब भवंडर जितने जगत के हैं वो सब तो कर दिया, वेद उपनिषद सब, जिससे कि स्वर्ग मिल सकता है वो भी तुमने किया। वेद में क्या है? वेद में जितने भी यज्ञ इत्यादि हैं वो स्वर्ग देने के लिए है। और उस स्वर्ग का क्या तात्पर्य होगा अंत में? तेतं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं किन्ने पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामालभन्ति। वेद को पढ़ करके और उसके अनुसार में चल करके यज्ञ इत्यादि करेंगे तो उससे स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग हो जाने के बाद में जब भोग का समय पीरियड चला जाएगा ना, तो देवता लोग वहाँ से लतिया देंगे। लतिया देना समझते हैं? लत से उसे मार करके ऐसा गिराएंगे जो सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाए, त्रिशंकु की भात में लटक करके नीचे गिरे। एक दो बार नहीं, हजारों बार ऐसा होगा। तो तुमने लोगों को ये गलत शिक्षा दी। व्यास जी कह रहे हैं सबके लिए सब शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तो उपनिषद में आपने ज्ञान की बात बतलाई, मुक्ति की बात बतलाई, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति भी कुछ नहीं है, मुक्ति है जो कोई गला दबा रहा था हमारा, मैंने उससे हाथ हटा दिया तो ये उससे हमारी मुक्ति हुई, मैं बच गया, इसका नाम है मुक्ति। माया ने हमारा गला पकड़ लिया और मैं संसार में जन्म मरण के चक्कर में था, उससे छुटकारा तो मिल गया, तो ये तो हुई मुक्ति। किंतु मुक्ति होने के बाद में जो भूख लगती है, सोने की इच्छा होती है, लोगों से बातचीत करके जो आनंद होता है, अपने बेटों से, स्त्री से, पति से जो हम मिलते हैं, परस्पर प्रेम जो करते हैं, वो तो कुछ हुआ नहीं, केवल मुक्ति हो गई। उस मुक्ति में सुख कुछ नहीं है। व्यास जी ने उपनिषदों में केवल मुक्ति की बात बतलाई, बहुत थोड़े रूप में, संक्षेप में, कुछ उपनिषदों में, कुछ भगवान का एक थोड़ा सा इशारा करके बतलाया, बस गोपाल उपनिषद इत्यादि में। भक्ति रे वैनम नयति दर्शयति भक्ति वसो पुरुषा भक्ति की बात थोड़ी बहुत बतला। और एक बतलाया सूक्ष्म में, जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य इति कथिता यार्था प्रकाशन्ते। बस भक्ति के संबंध में थोड़ी बहुत एक इंगित दी, अधिक नहीं बतला। उन्होंने ये भी नहीं बतलाया कि जीव के लिए कौन सा श्रेष्ठ आराध्य है और उस आराध्य को ठीक से पाने के लिए क्या साधन है, ये भी ठीक ठीक नहीं बताया। हजार तरह के साधन, हजार तरह के साथ साध्य आराध्य उन्होंने बताया। जीवों की कैसी दशा हुई कि एक जगह है, वहाँ से 10 रास्ते निकले हैं, गंभीर जंगल है और उसको कहीं एक जगह जाना है, उसको जगह को मालूम नहीं ये कौन रास्ते से जाएगा, वो वहाँ पर खड़ा है, कहीं ना कहीं तो उसको जाना पड़ेगा, किंतु कौन सा रास्ता में जाने से हमारा गंतव्य स्थल मालूम हो जाएगा, कहाँ मुझको जाना है ये पता नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा, वो निस्थिर ही नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा यही आपने गड़बड़ी की। राम इत्यादि के संबंध में भी बतलाया, नृसिंह इत्यादि के संबंध में भी बतलाया, विष्णु पुराण में विष्णु नारायण तत्व के संबंध में आपने बतलाया, शिव पुराण में शिव की बातें लिखी और सब जगह, किंतु कहीं भी आपने सुस्पष्ट रूप में जीवों का जो अंतिम लक्ष्य है ये आपने स्थिर नहीं किया, इसको स्थिर करके आप बतलाया। तो वो क्या है आप बतलाइए। उन्हें ये भक्ति से अभक्ति करो, किसकी? परम पुरुष कृष्ण की। चित्त को समाहित करो और उसमें स्वयं सब कुछ देखेगा। व्यास करने से नहीं हुआ, साधक करने से नहीं होगा। नारद जी ने अपनी कृपा से उनके ऊपर में और उसके द्वारा वो योग जब समाधि में जब हुए वो चीज उनके तरफ से आई। यही नाम है विशुद्ध सत्व। हम अपनी पृष्ठ इसी को कहते हैं कृपा शक्ति। उनके लिए हो, वाल्मीकि के लिए हो, जहां भी ये हुआ है, या हमारे कृष्ण कबीरदास दास गोस्वामी को किनकी कृपा से? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। ये सब कृपा सिद्धियां हैं, किंतु हम यदि चेष्टा नहीं करेंगे तो उनकी कृपा सिद्धि भी नहीं मिलेगी। और वो यदि देना भी चाहे तो नहीं देंगे, दोनों मिल करके होगा, हमारी चेष्टा और उनकी कृपा। वो कृपा हजार भी खेलते रहें किंतु यदि हम नहीं लेंगे, हम साधन भजन नहीं करेंगे तो उस कृपा को ग्रहण नहीं कर सकते। और हम हजार लेना चाहें और भगवान अपनी कृपा ना दें तो भी नहीं ले सकते। इसलिए यशोदा जी चेष्टा करके भी कृष्ण को नहीं बांधते। जब भगवान की कृपा और उसमें साधक का ये मिला तो तब नारद जी की कृपा से उन्होंने देखा अपश्यत पुरुषम
पूर्णम।
ये पूर्ण पुरुष कहाँ से आगे झट? भक्ति योग तो कर रहे से साधन, किंतु आया नारद जी की कृपा से, उन्होंने पूर्ण पुरुष को देखा। क्या पूर्ण पुरुष? श्रीमद् भागवत में जिनका पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है वही पूर्ण पुरुष है। एक से लेकर के नौवें स्कंद और नौ से लेकर के 11 और 12, ये सब सोपान हैं। दसवें स्कंद जो है वो पूर्ण पुरुष है, वही आश्रय है। आश्रय वही है ना, वही आश्रय है। उसी में उसी का चित्र सा वर्णन किया गया है। उस पुरुष की यदि कोई आराधना करे तब हो सकता है। इसलिए वही पूर्ण पुरुष को देखा। कृष्ण यदि अकेले होते तब तो वो पूर्ण पुरुष नहीं होते। देखा राधिका जी उनके साथ में है, उनके सखा लोग उनके साथ में है। भाई थोड़ा सा उसको चला दो पीछे वाले को, कभी पूर्ण नहीं होता। उन्होंने देखा, ब्रज भूमि को भी देखा, विश्व ब्रह्मांड को देखा, उसके अंदर में ब्रज को देखा, सखाओं को देखा, दासों को देखा, यशोदा मैया नंद बाबा इत्यादि को देखा, और कृष्ण को भी सब रूपों में देखा। और ये सब लोग कैसे उनकी सेवा कर रहे हैं इसको भी देखा। नंद बाबा यशोदा जी कैसे सेवा कर रही हैं, सखियां कैसी कर रही हैं, राधा जी हैं अकेले नहीं सबके साथ में, जिसका श्रीमद् भागवत में वर्णन किया, वो उस पूर्ण पुरुष को उन्होंने देखा। और देखा क्या? मायांच यद अपाश्यम, माया को भी उनके पीछे में देखा। अपाश्यम माने क्या? छाया की भांति। जैसे मनुष्य की छाया कहाँ जाती है? प्रकाश के विपरीत में। उधर से प्रकाश आ रहा है तो छाया जाएगी पीछे की तरफ, सामने में कभी भी छाया नहीं हो सके। यदि फिर यदि लाइट हमारे पीछे में जाएगी ना तो ये किधर की जाए छाया आएगी? ठीक उसके विपरीत, प्रकाश के विपरीत ही आएगी। ऐसे ही माया को कृष्ण के अपाश्रित देख। अपाश्रित माने क्या? जहां कृष्ण का प्रकाश नहीं है वहां पर माया देखा। जहां पर कृष्ण का प्रकाश है अर्थात तो उनकी भक्ति है, वहां पर इस माया को, जड़ीय माया को नहीं देखा, वहां पर महायोग माया को देखा। ये योग माया ही उनकी अपनी पूर्ण शक्ति है वहां पर। और देखा क्या? जो जी ऐसे पूर्ण जो पुरुष भगवान कृष्ण हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, वो तो क्रमशः ऊपर उठते हुए भगवान की सेवा में चले जा रहे हैं गोलोक ब्रज में, और जो लोग उनसे बहिर्मुख हैं वो धीरे धीरे माया में प्रवेश कर रहे हैं संसार। भगवान की भक्ति से ही जीव भगवान को पाएगा, और किसी भी उपाय से, ज्ञान से, योग से, तपस्या से, व्रत से, होम से, स्वाध्याय से नहीं पाएगा, वो उनको प्रेम से पाएगा। प्रेम का यदि कोई साधन करे, जैसा श्रीमद्भागवत में गोपियों ने, गोपों ने, ब्रजवासियों ने किया था, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोत्साम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म। ये मित्र किसके लिए लिखा कहा गया, किन लोगों के लिए? सब लोगों के लिए। उसमें सखा भी आ गए, माता पिता इत्यादि भी आ गए, और अधिकांत रूप में मधुर रस आश्रित वाले सभी आ गए। सभी के प्रति वो सभी लोग मित्र, किंतु वो मित्रता कुछ अलग अलग तरह की है, वो दूसरी बात। उन्होंने ये सब विचार पहले नहीं लिखा था, ऐसा देख करके उन्होंने श्रीमद् भागवत संहिता की, शाश्वत संहिता की को प्रकाश किया, जिसके सुनने से, जिसके पढ़ने से, जिसका आचरण करने से शीघ्र ही मनुष्य माया को पा करके भगवान को पा सकता है, उनकी सेवा को पा सकता है। जस्या वै श्रूयमाणायं कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उपद्यते पुंसा शोक मोह भया। शोक मोह भय, कैसा शोक मोह भय? मैं वृंदावन में भजन करने के लिए आया हूं या आई हूं ना, अब ये है हमारा जीवन का निर्वाह कैसे हो? भजन कर रहा हूं या कर रही हूं, जीवन का निर्वाह भी होना जरूरी है ना, तो ये किसको भाव आएगा? अभी भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं है। यदि किसी को ये पता रहे मैं तो मरूंगा या बचूंगा, बचूंगी या मरूंगी, मैं तो दिन रात उसी में तन्मय होकर के, तो वो देखेंगे कि नहीं? यदि विश्व ब्रह्मांड को वो देख रहे हैं तो हमें भी देखेंगे, तो अभी जानबूझ करके संसार के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। वो रक्षा करने वाले, तो ऐसा जो संदेह है ये भी दूर हो जाता है किसके द्वारा? भागवत में लिखे उपाय से जो साधन भजन करता है, ऐसे वैष्णवों का संग मिल जाता है जो भागवत के अनुसार में अपने जीवन को बनाते हैं, उनका संग मिल जाएगा तो बस एकांतिक भक्ति में वो प्रवेश कर जाएगा। शोक, शोक किसके लिए? हमारा नहीं, एक व्यक्ति मर जाता है, द्रौपदी के और पांचों पांडवों के कितने आदमी मर गए, अंत में शोक किया कि नहीं? पांचों ने और द्रौपदी ने किसी ने शोक नहीं किया, बस उत्तराचल की तरफ में कैसे अवधूत की भांति बिखर रहे थे केश, बढ़ते हुए चले जा रहे थे भगवत का स्मरण करते हुए। कोई भी अपना नहीं है संसार, सबको छोड़ छाड़ के मोह ममता जो कुछ थी है सब छोड़ दिया। वो भक्ति एक ऐसी ही चीज है, तो शोक मोह हम लोगों के भजन में सबसे बड़ा थक है मोह। तू स्त्री को साथ में लेकर के इस जगत में आया था, अपनी पत्नी को लेकर के आया, और तू साथ में लेकर के जाएगा, तू धन लेकर के वहां से आया था और धन लेकर के जाएगा, क्या लेकर के तू आया और क्या लेकर के जाएगा? यदि प्रभु उसे थोड़ा सा ले लेता है तो बिलबिलाने लगता है, ये है मोह, मोह के वजह से। किंतु भगवान का भजन करने आते ही मोह से हम कभी भी छुटकारा, यही मोह ही तो बलवान है। नाक में नकेल नथ लगा करके इधर उधर घुमा रहे, ये किंतु श्रीमद्भागवत का यदि वैसे रसिक तत्त्व वैष्णवों से जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, नारद गोस्वामी जी हैं, रूप सनातन जी हैं, ऐसे लोगों के मुख से यदि हम लोगों को सुनने को मिल जाए भागवत और हमारा चित्त उसमें लग जाए, तो ऐसे शोक मोह भयापहा वो भक्ति ऐसी है दोनों काम करेगी। उसकी दो वृत्तियां हैं, एक तटस्थ और एक स्वरूप। स्वरूप भक्ति के स्वरूप से प्रभाव क्या होगा, कृष्ण के चरणों में अपने आप सेवा प्रेम सेवामय भाव लग जाएगा, ये उसका स्वरूप लक्षण। और तटस्थ क्या है, शोक मोह ये सब अपने आप दूर हो जाएंगे यदि ठीक ठीक भजन एकांतिक रूप में करें। किंतु हम लोग एकांतिक रूप में भजन करना नहीं चाहते, यहीं पर गड़बड़ी है। सुनते हैं सब, गुरु जी से सब सुनेंगे किंतु करेंगे नहीं, ऐसे ही हो जाए। चेष्टा करो उसको छोड़ने के लिए, शोक मोह कैसे, भगवान का भजन करते हुए। तो स्वरूप शक्ति जो भक्ति है उसकी वृत्ति का पहला काम होगा जो भगवान के चरणों में प्रेम होने लगेगा, क्रमशः श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव क्रमशः प्रेम होता जाएगा। और जितने परिमाण में यह होता जाएगा अनर्थ सब, यही सब अनर्थ है, शोक मोह। जब तक शोक है, जब तक भय है, जब तक मोह है, तब तक भाई अभी भक्ति देवी अभी पूर्ण रूप से प्रकटित नहीं, ये समझो। किसी चीज के लिए भी हमको अपना सौंदर्य का अभी हमको रखना है। मान लिया कि घर बार छोड़ करके हम वो क्या पता नहीं मुख में लगाते हैं, बोरोलिन पॉकेट में हमारे है या अटैची में है, तो क्या समझो। यदि हमारी वृत्ति है कंघी एक साथ में रहनी चाहिए, स्टेशन से उतरेंगे तो बाल तो बिखर जाएंगे ना, तो उसको थोड़ा सा, तो ये क्या हुआ। तुम कृष्ण की भक्ति हो इसके लिए तू क्या कर रहा, मैं तो ये सब तो कर रहा। हो गंभीरता से भीतर में जाओ, भीतर के अंग में चित्त में ये सब वृत्तियां सोई हुई रहती हैं और सोते सोते काम करती हैं, हमको पहचानने नहीं दे, गंध भी नहीं लेने देती। ये शोक मोह भय के लाखों प्रकार के रूप हैं, प्रकाश। अच्छा तो रोज रोज दाढ़ी क्यों कमाता है बतलाओ, तो तुमको भगवान की जरूरत है ना दाढ़ी की जरूरत है, किस लिए। खूब फर्स्ट क्लास कपड़े पहनने की जरूरत क्या है, हम समझते हैं कि साधु लोगों की भी इसकी जरूरत है, इसलिए मोटा मोटा गद्दा उनको दे देते हैं जिससे बहुत अच्छे तरह से पसंद है, और हमको जो चीज पसंद है वही उनको दे। हो सकता है कि नहीं भी पसंद हो उनको, हो उनको ऐसी चीज चाहिए जिससे कि भक्ति की वृत्ति बढ़े, शोक मोह भय दूर हो जाए और भगवान की कैसी भक्ति हो। भागवत वाणी जैसे लिखा गया, ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्मण आविष्कृतम
तस्सन्नं सुपठन विचारं
करा भक्ते विमुच्यन् नरः। कैसी भक्ति होगी, ये सब दूर करके ज्ञान तत्व ज्ञान साथ साथ में होगा, साथ साथ में वैराग्य उत्पन्न करने वाला होगा विषयों से, और प्रेममयी भक्ति कृष्ण के प्रति होगी। तीनों एक साथ में होंगी, अलग अलग रूप में नहीं होंगी। तुम यदि प्रेम चाहेगा, जब प्रेम मिल जाए और साथ साथ में हमको ज्ञान और वैराग्य की जरूरत नहीं है, कि ज्ञान वैराग्य को लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसके लिए जरूरत नहीं, हमको तो बस प्रेम हो जाए, तो होगा होगा ही नहीं। इसलिए कहीं कहीं पर ज्ञान वैराग्य को भक्ति देवी का दत्तक पुत्र माना गया,
द्वार
दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र माने क्या, भक्ति देवी का ज्ञान वैराग्य पुत्र नहीं है, वो गोदी ले लिया,
पाल लिया।
अपना पुत्र क्या है? प्रेम, भक्ति देवी का। और ज्ञान वैराग्य दत्तक पुत्र दूसरे का पुत्र ले लिया, किस लिए? कुछ सहायता करेगा, किंतु वो ज्ञान वैराग्य कभी कभी और फंसा देते हैं, भक्ति की तरफ में नहीं बढ़ने देते, कभी कभी उसकी सहायता भी करते हैं। यदि सहायता करते हैं तो वो उसके अंग मान लिए जाएंगे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, और नहीं करेंगे तो अपने आप भगवान की कथाओं से, लीला से ही सतांग प्रसंग मम वैज्य संविदौ भवंत हित करण रसायन तथा तद्योषनात आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारती भक्ति। वो अपने आप हरी कथा से, उसका नित्य सेवन करो। कैसा सेवन? सो रहा है ना, भूख नहीं है, और थाल रख दिया तो वो देख रहा है कि भाई ये किस चीज की तरकारी है, सब्जी है, किस चीज की सब्जी बनाया, समझो जो भूख नहीं है। और यदि भूख रहेगी तो बंदर की भांति झट हाथ लगा करके बस मुख में दे दिया, गाल भर करके चलता है, उसका फुर्सत नहीं है देखने का ये कैसा है, स्वादिष्ट बना है कि कैसा बना है, नमक अधिक हो गया कि कम हो गया, भूख लगी। ऐसे ही उस हरि कथा का सेवन हो, उसको कभी बोला सतान प्रसंगम वीर्य संविदौ भवंत रित कर्ण रसायन कथा तज्जोसनात आशु अपवाद भवत्मनि सदार्थी। तज्जोसनात सेवन करने से, सेवन कैसा करो, जैसे अत्यंत क्षुधार्त व्यक्ति कुछ भी उनको मिल जाता है, सब तो भी तो बड़े प्रेम से उसे, ऐसे अत्यंत पिपासाजुक्त कानों से उस भगवान की कथा को सुनो, तब तो होगा। अभी सुन रहा हूँ, फिर कोई पूछे जैसे क्या सुना, तो मैंने सुना, मैंने रिकॉर्ड में भी भर लिया है, कुछ याद नहीं। कुछ लोगों को कुछ याद भी है तो यहाँ से गए तो वहाँ पर, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, उसका याद नहीं रखा, इसीलिए वो गोकर्ण के साथ में धुंधकारी जब जा रहा था वैकुंठ में, और सब लोग नहीं गए, किसी ने मनन नहीं किया और पीछे से फिर सब कथा कही तो सब लोगों ने मनन किया, तो सब लोग वैकुंठ, इसलिए हम लोग सुनेंगे एकदम इसको करने के लिए, खूब तृष्ट प्रगाढ़ रूप में इसको सुनेंगे, तब तो ये भक्ति शोक मोह भया पाई होगी, और अंत में श्रद्धा, साधन भक्ति, भाव भक्ति और भक्ति हम सब लोगों के अंदर में है, भक्ति हमारे अंदर में, स्वरूप भी उसके अंदर में। अभी हम लोग एक प्रसंग पर बातचीत कर रहे थे, ये भक्ति कहाँ है, नित्य सिद्ध तो है कहाँ नित्य सिद्ध, गुठली है, गुठली को मिट्टी में दे करके पानी दो तो उसमें अंकुर होकर के पेड़ होता है, आम नीम सब कटहल सब एक जगह में ही लगा दिया, अलग अलग जगह में एक ही मिट्टी और एक ही तरह का पानी से सींचा, एक ही छाया एक ही सूर्य सब कुछ, कोई खट्टा मीठा तीता कड़वा ऐसा क्यों हो जाता है, जो बीज में है वैसा ही होगा, पानी तो एक ही तरह का मिला। स्वरूप शक्ति की वृत्ति भी जो भक्ति है, लागनी और संवृत्ति, वो भी एक ही तरह से जीव के ऊपर में प्रतिफलित होती है, एक ही तरह की, किंतु किसी में दास्य किसी में सख्य किसी में भाव बात्सल्य किसी में मधुर हो जाता है। वो चीज जैसे पानी छाया सूर्य की रोशनी सब एक है, किंतु जब तक वो नहीं मिलेगा पानी तब तक बीज अंकुरित नहीं होगा, इसलिए खट्टापन मीठापन और आम इमली कटहल का ये जो भेद होता है, ये बीज में है, बीज में पोटेंसी है ना, उस ऊपर से जो आता है पानी टानी उसमें है, बीज में पोटेंसी है भाई, इसलिए जीवर स्वरूप है कृष्णदास। अब इसी को प्रकाशित करना है, जिसने इस जीवन में प्रकाशित कर लिया उसका जीवन सार्थक। फिर मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपने भोगों में शोक और मोह में मत रह जाओ, इस चीज को करना। इसने जिसको इस जन्म में कर लिया उसका तो जीवन सार्थक हो गया, और नहीं तो ना जाने कितने कोटि कोटि जन्मों के बाद में फिर सुयोग मिलेगा, कोई ठीक नहीं। इस जन्म में तो सभी कुछ मिल गया, क्या मिला? मनुष्य शरीर मिला, साधु संघ भी मिल गया, होता सदगुरु भी मिल गया, सब कुछ वृंदावन मथुरा का धाम भी मिल गया, बुद्धि भी अभी कुछ ठीक है, ये सब प्लम सुकल्पम गुरु कर्ण धारण मयानुकुल्लिन नभस्वतेरितं कुमान भवाप्तिम न तवेत सभा, सब कुछ मिल गया और इस जन्म में भी हमने नहीं किया है तो बेकार का ये मुसीबत। अब हम लोग आते हैं इसको उपाख्यान के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको इस रूप में समझे। वृत्राशु का हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। एक राजा थे चित्रकेत, वो इस भूलोक में ही राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने शादी की, शादी करने के बाद में कोई भी बच्चा नहीं हुआ। उन्होंने देखा जो स्त्री के गड़बड़ी के कारण ये बच्चा नहीं हो रहा, उसने एक और स्त्री से शादी, तो उसे भी शादी, फिर तीसरी की, चौथी की, पांचवी की, करते 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 उस समय आयु लंबी होती थी, इतना एक करोड़ लड़कियों से उन्होंने नई नई एक एक दो दो वर्षों में देखा, परीक्षा करते करते जैसे इससे बच्चा नहीं पैदा हुआ तो एक को और, ऐसे करते करते एक करोड़ भर जाए उनकी हुई।
इसके बाद
तो दोस्त था उनमें, उन्होंने उन लड़कियों पर आरोप किया। तो आदमी ये नहीं देखता है, उसके हाथ में पैसा होता है ना, तो अपना इलाज नहीं करेगा, वो दोष सब देगा
स्त्रियों पर,
स्त्रियों को दोष दे देगा, तो स्त्रियों को दोष दिया, लड़का नहीं, बहुत चिंतित हुआ, सब चीज़ की कोई चीज़ की कमी नहीं थी, स्त्रियां भी बड़ी खूबसूरत, बड़ी गुणी रूपवती, बड़ी पतिभक्त, राज्य भी बहुत, सेनाएं भी थी अतुलित सेनाएं, कोष भी भरा पड़ा, राज्य भी बहुत विस्तृत, सब होने पर भी सुख नहीं। अंत में एक दिन कौन ऋषि अंगिरा ऋषि वहां पर उपस्थित, भीख मांगने के लिए जरूर आए होंगे, बेटा कुछ दे दो इसके लिए आए, उनको क्या जरूरत है, जो बेटा दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं, राज्य दे सकते हैं, जो मुक्ति दे सकते हैं, स्वर्ग दे सकते हैं, यहाँ तक कि भक्ति दे सकते हैं, सब लोगों को सुख शांति सभी कुछ देते हैं, उनको गृहस्थों के यहाँ जाने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं। जरूरत एक है, भगवान के प्यारे जीव हैं, उनसे बिछड़े हुए हैं, इनको किसी प्रकार से भगवान से मिलान करा दें, भगवान की सेवा में नियुक्त कर दें, तो इनका बेचारों का कल्याण हो जाएगा, भगवान भी इनके लिए ये तड़प रहे हैं, ये अनुभव वो करते हैं किंतु हम लोग नहीं कर रहे, इसलिए बड़े दुखी होकर के जीवों की दशा देख करके नारद जी उनके घर पर गए, अंगिरा। अंगिरा मैंने क्या, अंग, क्या उसका अर्थ क्या होगा?
जाए तो इतने
गीरा माने वाणी, यही उसका अर्थ होगा वाणी के द्वारा जो समस्त विश्व का कल्याण करता है, यही यही समझ रखो उसका जो यथार्थ क्या तात्पर्य। नाम भी सार्थक नाम होता है, कोई भी नाम अनर्थक नहीं होता, हमारे बस अंततः वैदिक ये सब विषय है। जैसा भी हो वो मुक्त महापुरुष थे, सब समर्थ थे, वहां पर मैंने कहा तुम्हारा कोष भरा है, तुम्हारी रानियां खूबसूरत हैं, तुम्हारी सेवा करती हैं, उनको सब प्रकार से तू प्रसन्न रखता है, सेनाओं को तुम समय पर वेतन देता है, उनको प्रसन्न रखता है कि नहीं, और प्रजाओं का तुम हित करता है कि नहीं, सब जो कुछ पूछना चाहिए संसारिक वाले लोगों को, जब हम मिलते हैं ना तो हम ये नहीं मिलते हैं कि तुम्हारा भजन हो रहा है, हम कहते हैं भलो अच्छो तुम ठीक है, कुशल है, मंगल है, निरोग तो है, ये पूछते हैं, किंतु तुम्हारा कल्याण हम जानते हैं कि नहीं है, और वो भी जानता है कि हमारा कल्याण।